पिंकेश कुमार की आवाज में, बीए प्रथम वर्ष, राजनीति विज्ञान, भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन की पृष्ठभूमि। 1942 की अनूठी जन क्रांति को, उसे जन्म देने वाली शक्तियों को समझने के लिए भारत के अंदर 1934 के बाद होने वाली राजनीतिक घटनाक्रम तथा उसके विकास को समझना आवश्यक है। 1934 में स्वामीनाथवादी आंदोलन समाप्त हुआ। 1935 के अधिनियम तो इसलिए पारित किया गया क्योंकि हमें यह समझते थे कि भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बनाए रखने का सर्वोत्तम उपाय यही है। इस सुधार के द्वारा भारत का उद्देश्य उदार पंथियों को संतुष्ट करना तथा कांग्रेस के अंदर मतभेद और आंतरिक कलह पैदा करना था। सरकार अपने उद्देश्य में बड़ी सीमा तक सफल होती दिखाई दिया, जबकि 1937 के चुनाव को लेकर कांग्रेस के दक्षिण पंथ तथा वाम पंथ आमने सामने आ खड़े हुए। 1935 का सुधार कानून अस्वीकार है, इस पर कांग्रेस में मतभेद नहीं था। चुनाव के राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भाग लेना चाहिए, इस पर भी हम सहमति थे, किंतु चुनाव जीतने पर सरकार बनाए जाए या नहीं, इस पर वाम पंथ का जवाब था नहीं। वामपंथ की समझ को पेश करते हुए नेहरू ने कहा था, कांग्रेस सरकार बनाकर किसी न किसी रूप में दमनकारी साम्राज्यवाद सत्ता का हिस्सा बन जाएगी और जनता का शोषण करने में उसमें सहयोग करेगी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, जिस प्रकार भारत को बगैर उसकी सहमति के युद्धरत घोषित कर दिया गया, उसके विरोध में कांग्रेस ने प्रांतीय सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद भी कांग्रेस का रुख ब्रिटेन के लिए परेशानी पैदा करने वाला युद्ध या युद्ध में बाधा डालने के लिए नहीं था। गांधी युवा कांग्रेस हाईकमान की यह कोशिश थी कि भारत सरकार से कोई समझौता हो जाए। समझौते की न्यूनतम शर्तम थी युद्ध के पश्चात भारत को स्वतंत्र कराने का वचन तथा तत्कालिक तंत्र पर केंद्र की राष्ट्रीय सरकार की स्थापना। कांग्रेस के द्वारा यह समझौतावादी रुख उस समय अपनाया जा रहा था जबकि सुभाष चंद्र बोस तथा कांग्रेस सहित वामपंथियों का बड़ा हिस्सा यह मानता था कि साम्राज्यवादी युद्ध ने स्वाधीनता प्राप्ति के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया है तथा उसका पूरा पूरा लाभ उठाना जाना चाहिए। कांग्रेस में प्रभावी दक्षिण पंथी नेतृत्व के चलते ऐसा नहीं हो सका। दूसरी ओर सरकार यूरोप में हिटलर तथा दक्षिण पूर्व एशिया में जापान की चमत्कारी सफलता का वर्ष था। 1942 चमत्कारी सफलता का वर्ष था, युद्ध का खतरा भारत के दरवाजे पर आ गया था। युद्ध प्रयासों में भारतीयों का शत प्रतिशत सहयोग प्राप्त करना मित्र राष्ट्रों की जरूरत बन गया था, अतः रूजवेल्ट, चंग आइसेक तथा लेबर पार्टी का नेतृत्व चर्चिल पर दबाव डालने लगा कि इस समर्थन को प्राप्त करने के लिए भारतीय समस्या का समाधान किया जाए। इसी दबाव में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया। मिशन भेजना मजबूरी थी किंतु चर्चिल, विदेश मंत्री एमरी पाइसलाय लिनलिथगो और कमांडर इन चीफ बेवेल चाहते भी नहीं थे कि मिशन सफल हो, अतः मिशन के माध्यम से इसे प्रस्ताव लिखे गए कि भारतीय नेतृत्व उन्हें स्वीकार न कर सके। यदि भारतीय नेतृत्व इसे अस्वीकार कर देते हैं तो दुनिया के सामने उनकी ईमानदारी सिद्ध हो जाएगी। इसका प्रभाव ब्रिटेन और संयुक्त अमेरिका में पूर्णतः लाभकारी रहा। वहां प्रभाव भले ही लाभकारी रहा हो, भारत में वह क्रिप्स मिशन की असफलता अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन की तत्कालिक कारण बन गई। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता ने गांधी जी के विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। जनता को अधिक उग्र विचारधारा से जुड़ने से रोकने के लिए तथा जवान समर्थक अपना से विनोख करने के लिए जरूरी हो गया था कि कांग्रेस स्वयं उगते वर अपनाए। 5 जुलाई को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में गांधी ने जोर दिया कि वह समय आ गया, अब कांग्रेस को मांग बुलंद करनी चाहिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 14 जुलाई 1942 को वर्किंग कमेटी ने नहीं आंदोलन के संबंध में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया। इसी के आधार पर कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो संबंधी अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो का इतिहास। 8 अगस्त 1942 को पारित किए गए प्रस्ताव के प्रथम भाग में एक ओर तो इसके लिए चिंता व्यक्त की गई कि चीन या रूस की रक्षा व्यवस्था को किसी भी तरह उलझन में न डाला जाए, दूसरी ओर इस बात पर बल दिया गया कि भारत की भलाई और संयुक्त राष्ट्र के पक्ष की सफलता दोनों के लिए भारत में ब्रिटिश हुकूमत को कौन फौरन समाप्त किया जाना निहायत जरूरी है। यह विश्वास दिलाया गया कि स्वतंत्रता की घोषणा के उपरांत भारत में एक अस्थायी सरकार का गठन होगा तथा स्वतंत्र भारत संयुक्त राष्ट्र का मित्र बन जाएगा और स्वतंत्रता के लिए चलने वाले प्रयास की परीक्षा और कठिनाइयों में उसका साझेदार बनेगा। प्रस्ताव के दूसरे भाग में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बड़े पैमाने पर अहिंसक जनसंकल्प आरंभ करने तथा इस संघर्ष का नेतृत्व गांधी के हाथ में देने की बात की गई। इस प्रस्ताव से पहले ही गुप्त कार्य योजना प्रसारित की गई थी। प्रस्ताव के दूसरे भाग में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बड़े पैमाने पर अहिंसक जनसंघर्ष प्रारंभ करने तथा इस संघर्ष का नेतृत्व गांधी को सौंपने का निर्णय लिया गया। इस प्रस्ताव से पहले ही गुप्त कार्य योजना प्रसारित की गई थी। इसमें कांग्रेसियों को निर्देश दिया गया था कि जब तक नेताओं को कैद नहीं किया जाता है, आंदोलन अहिंसक ढंग से चलाया जाए, लेकिन अगर सरकार गांधी जी और दूसरे कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है तो सरकार की हिंसा का हर संभव उपाय से मुकाबला करने के लिए लोगों को हिंसक या अहिंसक कोई भी तरीका अपनाने की आज़ादी होगी। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस कमेटियों को यह सख्त निर्देश था कि जब तक महात्मा जी तय नहीं करे तब तक कोई आंदोलनात्मक कदम न उठाया जाए। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ। 9 अगस्त को सरकार ने तुरंत जवाबी हमला किया तथा गांधी समेत सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ही देश में व्यापक स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन आरंभ हो गया। आंदोलन इतना तीव्र था कि इन लिंगों ने उसे 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह बताया। भारत छोड़ो आंदोलन पूर्वी और पश्चिमी संयुक्त प्रांत था, उत्तर बिहार में चरम सीमा पर रहा। इसके लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जिनमें मुख्य रूप से जनता के बढ़ते हुए आर्थिक कष्ट तथा नस्लवाद के खिलाफ उत्पन्न आक्रोश एवं दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों की परंपरागत भारतीयों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार का उल्लेख किया जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य प्रमुख विशेषता यह थी कि संपूर्ण दौर में आंदोलन का नेतृत्व नए युवा लोगों के हाथ में था। सुमित सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के इतिहास को मोटे तौर पर 3 चरण में विभाजित करते हैं। पहला, प्रथम चरण में आंदोलन अल्पकालिक किंतु सर्वाधिक हिंसक था। यह मूलतः शहरी आंदोलन था। इसका प्रभाव बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता के साथ साथ लखनऊ, कानपुर, नागपुर, अहमदाबाद पर अधिक पड़ा। आंदोलन को विद्यार्थियों ने आरंभ किया तथा मध्यम वर्ग ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूसरा, दूसरे चरण में आंदोलन ग्रामीण आंदोलन में बदल गया। संचार साधन नष्ट करना तथा विदेशी सत्ता के विरुद्ध किसान संघर्ष का नेतृत्व करना आंदोलन की विशेषता रही। इस दौर में आंदोलन के मुख्य केंद्र बिहार, पूर्वी संयुक्त प्रांत मिदनापुर बंगाल तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र रहे। अनेक स्थानों पर अल्पकालिक राष्ट्रीय सरकारें भी बनी। तीसरा, आंदोलन का तीसरा चरण सितंबर 1942 के मध्य से आरंभ हुआ। यह सबसे लंबा किंतु सबसे कम उम्र चरण था। इस चरण की मुख्य विशेषता यह रही कि शिक्षित मध्यवर्गीय नवयुवकों ने आतंकवादी गतिविधियों तथा छापामार संघर्षों को चलाया। इस चरण में भी कुछ संघ क्षेत्रों में समानांतर राष्ट्रीय सरकार गठित की गई। तामलुक की सरकार तो सितंबर 1944 तक काम करती रही। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का दमन करने में ब्रिटिश सरकार ने क्रूरता व जंगलीपन की सभी सीमाओं को तोड़ दिया। 1943 तक लगभग 92,000 लोग कैद किए गए। कम से कम 1,000 लोग पुलिस के हाथों मारे गए। बलात्कार, आमनुषी को उत्पीड़न व गांवों को आग लगाओ पुलिस द्वारा जलाकर राख करने की घटना समान हो गई। सुमित सरकार के शब्दों में, इस दमन की तुलना केवल 1857 से की जा सकती थी। अंतर यह था कि अब अंग्रेजों के हाथ में आधुनिक सैन्य विज्ञान के सभी साधन थे, जबकि जनता लगभग पूर्ण रूप से निहत्थी थी। इस निर्मम दमन के बावजूद आंदोलन कितना उग्र रहा था, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि 1943 के अंत तक 208 पुलिस चौकियां, 332 रेलवे स्टेशन और 945 डाकघर या तो नष्ट किए गए या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किए गए और 664 बम विस्फोट कांड हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप तथा महत्व। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप तथा महत्व का विश्लेषण इतिहासकारों ने अलग अलग दृष्टिकोण से किया है। रजनी पामदत्त ने भारत छोड़ो आंदोलन का आकलन करते हुए एक ओर तो यह तथ्य रेखांकित किया कि राष्ट्रीय नेता अपनी इच्छा के विरुद्ध इस रास्ते पर खिंचाए थे, क्योंकि वो स्वतंत्रता के आधार पर सहयोग करने की हर कोशिश हार गए थे। इस परिस्थितिजन्य व्यवस्था के बावजूद वे यह मानते थे कि यह आंदोलन एक भयंकर भूल थी। रजनी पामदत्त के अनुसार एक ओर चीन रूस की स्वतंत्रता की कामना करने तथा संयुक्त राष्ट्र की सफलता की इच्छा रखने, दूसरी ओर भारत में अपने कार्यों के द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करने की विरोधी धाराओं के चलते इस प्रस्ताव में ऐसी घातक विसंगतियां थी जिसे पता चलता था कि प्रस्ताव पारित करने वालों के मन में उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। रजनी पामदत्त का मानना यह है कि वास्तव में कांग्रेस का उद्देश्य कोई गंभीर संघर्ष छेड़ना नहीं था। 1945 तक जिस तरह गांधी, नेहरू सहित सभी नेताओं ने आंदोलन को अपना आंदोलन बताने से इनकार किया, उससे इस मान्यता की पुष्टि होती है। कांग्रेस ने तो यह सोचकर संघर्ष की धमकी दी थी कि इसके दबाव में सरकार समझौता वार्ता आरंभ कर देगी। उसका यह काम बुद्धिहीनता का था। तथा एक भयंकर युद्ध के नाजुक दौर में इस नीति पर चलने का अर्थ था कि स्थिति को समझने में और साम्राज्यवादियों के दावपेच से परिचित होने में वह धोखा खा गए। राजनी पामदत्त के विपरीत बिपिन चंद का मानना है, भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता की हिस्सेदारी तथा समर्थन एक नई सीमा तक पहुंचा। आंदोलन में छात्रों, युवाओं एवं महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उनके द्वारा रेखांकित किया गया है। आंदोलन में छात्रों एवं महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उनके द्वारा रेखांकित किया गया है। उनके शब्दों में, देश भर में किसान, चाहे वह अमीर हो या गरीब, इस आंदोलन की जान थे तथा आंदोलन के समर्थन में व्यवसायी वर्ग ने अपनी थैलियां खोल दी थी। उनके बिपिन चंद्र के अनुसार सामंत वर्ग तटस्थ रहा था नौकरशाह हुआ पुलिस की हमदर्दी आंदोलन के साथ थे। निष्कर्ष के रूप में इस ऐतिहासिक आंदोलन की एक बड़ी खूबी यह थी कि इसके द्वारा आज़ादी की मांग राष्ट्रीय आंदोलन की पहली मांग बन गई। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अब पीछे नहीं मुड़ा जा सकता था। सुमित सरकार 1942 का विश्लेषण, कम जोशीले व अधिक संयत ढंग से करते हुए मानते हैं कि इससे आरंभ में श्रमिकों की छोटी और सीमित भूमिका रही थी। उनके अनुसार जिस बात ने आंदोलन को इतना प्रचंड बनाया वह थी कुछ क्षेत्रों में किसानों का भारी विद्रोह। इस आंदोलन ने 1857 के बाद के आंदोलन की सबसे ज्यादा जुझारूपन था और तीव्र साम्राज्यवाद के विरोध ने आंतरिक वर्गीय तनाव और सामाजिक जुझारूपन को भी कम कर दिया था। क्षेत्रीय दृष्टि से पंजाब सीमा प्रांत, तमिलनाडु और केरल में 1942 के आंदोलन का प्रभाव कम रहा था तथा लगभग सभी स्थानों पर मुसलमान 1942 के आंदोलन से अलग रहे थे। 1942 के आंदोलन कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, पुलिस द्वारा गोली चलाया गया 470 बार, संघातिक रूप से हताहत 642, असंघातिक रूप से हताहत 1392, क्षतिग्रस्त या पूर्ण रूप से विनिष्ट थाने 165, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 9 अगस्त से 31 दिसंबर 1942 के मध्य 60,229, भारत रक्षा कानून में नज़रबंद 31 दिसंबर 1942 तक 18,000, क्षतिग्रस्त रेलवे स्टेशन 250, क्षतिग्रस्त या जलाए गए डाकघर 600, तार काटे जाने की बर्दात 3500 बार। 1942 के आंदोलन की अविस्मरणीय घटनाएं एवं व्यक्तित्व, 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी ने बम्बई अधिवेशन में पारित किया। 9 अगस्त को पूरी वर्किंग कमेटी व कई अन्य नेता गिरफ्तार था कांग्रेस गैरकानूनी संगठन घोषित। 2 सप्ताह तक मुंगेर का संपर्क बाहरी दुनिया से कटा रहा। आंदोलन के आरंभ में ही हिंदू यूनिवर्सिटी पर सेना ने अधिकार कर लिया। अहमदाबाद की कपड़ा मिले 3 माह तक बंद रहे। 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागकर जयप्रकाश नारायण ने केंद्रीय एक्शन कमेटी का गठन कर नेपाल को अपना अड्डा बनाया तथा आजाद दस्तों का गठन किया। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के सामने क्रांतिकारियों व सरकार के सशस्त्र बलों में अनेक शहीद हुए। तामलुक, मिदनापुर, तलचर उड़ीसा, सतारा महाराष्ट्र तथा बलिया पूर्वी संयुक्त प्रांत में राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना की गई। इनमें तामलुक की सरकार सबसे अधिक समय तक काम करती रही। तीव्र किसान संघर्ष के चलते बिहार के सारण जिले को कुख्यात रूप से अपराधी जिला घोषित कर दिया गया। आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रभावित देशी राज्य था मैसूर। बलिया गाजीपुर की राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व चित्तु पांडे द्वारा किया गया था। तामलुक सरकार के पहले सर्वाधिनायक थे सतीश सामंत। तामलुक में संघर्ष में शहीद होने वालों में 73 वर्षीय मतंगनी हजारा थे, जिन्होंने गोली लगने पर भी राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा रखा। उड़ीसा के कोरापुट में संघर्ष का नेतृत्व लक्ष्मण नायक द्वारा, कटक में रक्तवाहिनी संगठन द्वारा आतंकवादी कार्रवाइयां, सतारा में नाना पाटिल द्वारा आरंभ किए गए संघर्ष को डाकू मैगजी द्वारा पूर्ण सहायता दी गई। 1942 के आंदोलन के चर्चित नेता थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और नवासाफ अली, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव। 1942 के आंदोलन के बारे में विभिन्न नेताओं का वक्तव्य, अबुल कलाम आजाद, युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर दिया था, हमें सिर्फ वादों पर निर्भर करना आसान नहीं होगा। मध्य प्रांत का गवर्नर ने बोला था, यह बात खूब स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भीतर विद्यमान पूंजीवादी तत्व अपने आप को और अपनी संपत्ति को संभावित जापानी आक्रमण से बचाने के लिए कुछ भी करेंगे।